تفسیر سورة کہف کے آغاز میں اس کا تعارف جو ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں. سورة کہف مکی سورت ہے, اس کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں. 1577 کلمات ہیں, 1577 اس کے اندر جو ہیں ورڈز ہیں, اور اس کے اندر جو حروف ہیں وہ ہیں 6360, لیٹرز ہیں 6360. اور اس سورت کا نام جو ہے پہلے رکوع کی نامی آیت سے لیا گیا ہے, از اول فتیتو الی الکہف, کہ جب نوجوانوں نے جو ہے وہ غار میں پناہ لی. تو یہ کہف جو ہے اس کے شروع میں الف لام بھی لگا ہوا ہے. کہف کہتے کس کو ہیں؟ غار کو کہتے ہیں. غار جو پہاڑ میں کھلا ہو, جیسے پہاڑ ہے اس کے اندر غار ہے, لیکن وہ غار ایسا ہے کہ کھلا ہوا ہے, تو اس کو کہف کہتے ہیں. اور اگر وہ غار جو پہاڑ میں ہے لیکن تنگ ہے تو اس کو غار کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ جو کہف ہے عربی زبان میں وسیع غار کو کہتے ہیں, بڑے غار کو کہتے ہیں. اور غار کا لفظ جو ہے وہ چھوٹے غار کے لیے جو تنگ ہے, جیسے کھو ٹائپ, تو اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا اختتام جو تھا, آپ نے ویسے تو بنی اسرائیل کے بارے میں بہت سا پڑھا, لیکن سورت اسرا ہے نا, اسرا بھی کس کے نام پر ہے؟ ہاں, ویسے تو آپ دیکھیں گی تو آپ نے اسرائیل ہے نا, تو پیچھے بھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا تھا, تو اسرا لے جانا, رات کے وقت لے جانا نا. تو سورت جو اسرا ہے اس کی ابتدا میں بھی اور اس کے اختتام میں بھی آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ رب العزت کی تعریف, اللہ کی حمد کے گیت تھے نا. اس کی ابتدا میں کیا تھا؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ابتدا میں سبحان الذی, سبحان اللہ, تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے, یہ اللہ کی حمد ہے, پاکیزگی ہے. پھر اس کی آخری آیت کیا تھی؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ہے نا. اور بالکل آخر میں, بیچ میں سے اگر آپ چھوڑ کے اینڈ پہ بھی جائیں تو وہاں پہ کیا تھا؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو سورت بنی اسرائیل آغاز میں بھی اور اختتام میں بھی اللہ کی پاکی, اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اور یہ سورت جو ہے سورت الکہف, آپ دیکھیں تو اس کے بھی آغاز میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے, پاکی بیان کی گئی ہے. کس طرح سے؟ الحمدللہ الذی. تو آپ دیکھ لیں کہ بالکل آغاز میں یہ بات ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, حمد اللہ ہی کے لیے ہے. اور اگر اس کی بالکل آپ آخری آیتیں جو ہیں وہ بھی دیکھیں تو اس میں بھی اللہ کی حمد جو ہے وہ بیان کی گئی ہے, کہ اگر تم جو ہے اللہ کی حمد کو بیان کرنا چاہو, اللہ کی تعریف کو بیان کرنا چاہو تو ہاں, سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور تب بھی اللہ کی حمد جو ہے تم بیان نہیں کر سکتے, یعنی وہ ختم ہو جائے گی سیاہی, لیکن اللہ کی تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد اور تعریف آغاز میں بھی ہے, اختتام میں بھی ہے. اور قرآن میں جو ہے وہ قل الحمدللہ یہ لفظ جو ہے یہ 38 دفعہ آیا ہے. الحمدللہ, الحمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ 38 دفعہ آیا ہے. اس سورت کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ قصوں پر مشتمل ہے, زیادہ تر حصہ قصوں پر مشتمل ہے. بالکل شروع میں آپ دیکھیں گی اصحاب کہف نمبر ون, نمبر دو پھر دو باغوں کا قصہ ہے, دو باغوں کی کہانی ہے. نمبر تین इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस की तरफ इशारा है। नंबर चार, दरमियान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक सवाले बंदे जो है उनकी कहानी है, जिन्हें हम किस नाम से याद करते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम। और आखिर में ज़ुल्करनैन का जो है वो वाकया बयान किया गया है। तो सूरत कहफ की आयात का ज्यादातर हिस्सा इन किस्सों में चला गया। 110 इसकी कुल आयतें, जिनमें से 71 में ये किस्से जो हैं वो बयान किए गए हैं, और 71 यानी 71 आयात के अलावा जो आयात हैं इनका भी बड़ा हिस्सा इन्हीं किस्सों पर तबसरे पर मुश्तमिल है। जैसे एक होता है ना, किस्सा बयान कर दिया, फिर मजीद उसकी वजाहत, तबसरा, तो बीच बीच में कहीं क़यामत, इंसानी जिंदगी के मनाजिर भी जो है वो पेश किए गए हैं। अब अगला और सबसे अहम सवाल है कि इस सूरत का मौजू और मजमून क्या है। इस सूरत में के बारे में ये बात याद रखिएगा कि ये सूरत मुशरकीने मक्का के तीन सवालात के जवाब में जो है वो नाजिल हुई, जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तहान लेने के लिए अहले किताब के मशवरे से आपके सामने पेश किए थे। अहले किताब कौन है? यहूदो नसारा। तो वो तीन सवाल जो पेश किए थे उनमें से नंबर एक ये था कि असहाब कहफ कौन थे, नंबर दो किस्सा खिज़र की हकीकत क्या है, और ज़ुल्करनैन का वाकया जो है वो क्या है, और इसका जो मकसद है और इसका मौजू है इसमें ये बात भी बहुत अहम है कि इस्लामी नजरिया हयात, इंसान वो कौन से बिलीव्स हैं, वो कौन सी थ्योरी है जिस पर अपनी जिंदगी जो है उसको बसर करे, और इसी तरह इस्लामी अकीदा। फिर इस सूरत के अंदर इस्लामी फिक्र और नजर की दुरुस्तगी बड़ी खास तौर पर जो है वो की गई है कि इस्लामी फिक्र बदले और साथ ही इंसान की जो है वो नजर भी बदले, जब वो बदलेगी तो इंसान के अमल बदलेंगे, और साथ साथ इस्लाम की बेस्ट वैल्यूज जो है ना, बेहतरीन जो अकदार है उनको भी सूरत में जो है वो पेश किया गया है। अहदीस में सूरत कहफ के फजाइल हमें मिलते हैं। बरा बिन आज़िब कहते हैं रजी अल्लाह अन्हो कि एक शख्स रात को घर में ये सूरत पढ़ रहा था और घोड़ा भी वही बंधा हुआ था, तो घोड़ा बिदकने लगा। इसने ऊपर जो सर उठाकर देखा तो एक नूर दिखाई दिया जो बादल की तरह साया किए हुए था। सुबह उसने ये वाकया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आपने फरमाया ये सकीना है जो इसके पढ़ने से नाजिल हुई थी। सकीना किसे कहते हैं? नूरे इत्मीनान को। सकीना जो है यानी ऐसी कैफियत और ऐसा जो है वो दिल का सुकून जिससे इंसान के अंदर जो है वो उसको बहुत ही इत्मीनान की कैफियत जो है उसके अंदर पैदा होने शुरू हो जाए, तो सकीनत और बरकत तो इस सूरत के पढ़ने से जो है वो सहाबी पर जो है वो नाजिल हुई। और हमें हदीस की जो और हदीसें हैं उसमें इन सहाबी का नाम जो है हजरत उसैद भी मिलता है। इसी तरह सैयदना अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस सूरत की पहली तीन आयात पढ़ता रहे वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। इसे तिर्मिजी ने रवायत किया है, और पहली हदीस भी तिर्मिजी ने उसको रवायत किया है। और ये जो वाकया था ना कि घोड़ा बंधा हुआ और वो फिर डरने लगा क्योंकि ऊपर सकीना देखकर, तो उसको बुखारी और मुस्लिम ने भी इसको रवायत किया इस वाक्य को। इसी तरह जो है वो इमाम मुस्लिम ने जो है वो रवायत किया है कि जो शख्स सूरत कहफ की पहली 10 आयतें याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुमे के दिन सूरत कहफ पढ़े दो जुमों के दरमियान इसके लिए नूर रोशन हो जाता है। तो ये हदीस जो है ये बहकी और मिशकात जो है उसके हवाले से है। तो आप बताइए कि आप में से किसी को आती है सूरत कहफ। अच्छा, कितने लोग हैं जो जुमे को सूरत कहफ पढ़ते हैं? माशाल्लाह, ज्यादातर क्लास जो है वो सूरत कहफ पढ़ती है। कितने लोगों को इसकी इब्तदाई 10 आयतें आती हैं? चलो पूरी सूरत कहफ नहीं तो हम पहली 10 आयतें तो कर सकते हैं ना, वरना फिर कम अज कम 3 आयतें, यानी 10 आयतें वरना फिर कम अज कम जो है वो 3 आयतें। इसी तरह बाज लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे ये जो वाकया है ना कि पहली 10 आयतें, तो बाज ये भी कहते हैं कि आखिरी 10 आयतें याद करने का भी जिक्र है। तो मकसद क्या है इन सारी बातों से कि हम जो हैं हमारा कुरान से ताल्लुक भी हो, और दूसरी बात है कि हम में से कौन ऐसा दिल है जो ये ना चाहता हो कि उसको नूर मिले ना, और कौन सा ऐसा सीना है जो ये ना चाहता हो कि उसके ऊपर सकीना नाजिल हो, दिल और दिमाग। हम तो सभी चाहते हैं कि हमारे घरों में इतने मसाइल परेशानियां और दीन से दूरी है, गफलतें हैं और उलझे हुए हैं जैसे रसियानी रेशम की तारें आपस में उलझ जाएं। तो मसाइल इतने उलझे हुए हैं, तो उन उलझे हुए मसाइल से निकलने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि हम कुरान से अपने आप को करीब करें, हम कुरान के करीब हों। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जैसे हमारी दादी नानी सूरत कहाँ पढ़ती रही तो किसी ने नहीं भी बताई ये सारी बातें, तो हमें भी हुआ कि हम भी सूरत कहाँ पढ़े ना। और एक घर में एक जैसे वालदैन में से कोई पढ़ता था, छोटी सी बच्ची जो थी ना वो जब भी जुमा होता है वो कहती है मुझे सूरत कहाँ पढ़नी है ना, और सूरत कहाँ पढ़ती है, तो माहौल का जो है ना वो बड़ा असर होता है। हमें बहुत सी बातें पता हैं, हमारी एक ये भी बहुत बड़ी बदबख्ती है या बदकिस्मती है कि हम अपने साथ साथ ना अपने बच्चों को नहीं कहते कि आप हो सकते हैं पढ़ती हैं, जैसे आप अक्सरियत पढ़ती हैं, लेकिन बच्चे हम कितने पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत से घरों में बच्चों ने नाजरा कुरान तो पढ़ लिया हुआ है ना, और आप में से बाज के बच्चे तो हाफिज भी हैं, हिफ्ज कर रहे हैं। तो अगर अपनी रूटीन लाइफ में एक बात को हम लाएं, क्या जुमा है या तो सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चे पढ़कर जाएं, या वो घर आए तो उनको याद दिलाया जाए कि बेटा आज सूरत कहफ जो है ना पढ़ लीजिए आप। और इसी तरह जो है वो सूरत जो है अलमुल्क पढ़ना रात को सोने से पहले, इसी तरह सूरत मुजम्मिल है, सूरत वाकया है और बहुत सी सूरतें हैं। तो असल बात यह है कि ये एक विरसा है जो हम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाएंगे, और जिन चीजों को खुद अपने दांतों से और हाथों से पकड़ेंगे ना उन्हीं को हम आगे जो है ना वो ट्रांसफर भी कर सकेंगे, वरना भी बहुत देर हो जाएगी। तो ये इतनी खूबसूरत इतनी बेहतरीन सूरत कि जिसको याद कर लें तो फितना दज्जाल से महफूज रहें। और इस सिलसिले में भी हमारी दो जिम्मेदारियां बनती हैं फितना दज्जाल के बारे में। बाज लोग तो हर वक्त इसी का जिक्र करते रहते हैं, एक एक्सट्रीम ये है ना, और इसी का जिक्र और बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और बाज दूसरी इंतहा ये है कहते हैं कि कोई नहीं है, दज्जाल है ही कोई नहीं, उस सिरे से उसका इनकार कर देते हैं। तो हमें हदीस में पता चलता है कि दज्जाल का फितना जो है वो आने वाला है, तो हमारे पास इसकी कुछ जो जरूरी मालूमात है वो जरूर होनी चाहिए ताकि उस फितने से हम अपने आप को जो है वो महफूज रख सकें। और दूसरी अहम बात यह है कि मैं अक्सर इस बात पे गौर करती हूँ कि जिस सूरत की फजीलत अहदीस से मिले और वो भी मुस्तनद अहदीस से मिले, तो इसका क्या मतलब है कि वाकई वो कोई, वैसे तो पूरा कुरान ही बहुत अहम है लेकिन उसके अंदर खास तौर पर ऐसे मजामीन पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो बरकात अनवार सकीना रहमत हमारे घरों पे जो है वो नाजिल हो सकती है। जैसे एक दफा जो है वो किसी ने, मैंने भी आपको हदीस सुनाई थी इमाम मुस्लिम की, कि जिस घर में सूरत बकरा पड़ी जाए शैतान उस घर से भाग जाता है। तो अब ये कि बाज लोग कहते हैं जी हमने तो अपने घर में सूरत बकरा की कैसेट लगा दी है फिर भी हमारे घर में जो है ना शैतान रहता है, तो असल में बाज औकात ये होता है कि हो सकता है मैं ही वो शैतान का किरदार अदा कर रही हूँ, हम खुद ही शैतान बने हुए ना उसके चेले। बाज लोग कहते हैं ना कि रमजान के महीने में कहते हैं कि शैतान बांध दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, तो फिर लोग बुराइयां क्यों करते हैं? तो शैतान ने ट्रेनिंग करके अपनी जुर्रियत को इतना एक्टिव कर दिया है कि उसको बांध भी दिया जाता है ना, तो बाकी उसके जो फौज है ना فوج ظفر جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں, کیونکہ بعض عادتیں اتنی پکی ہو گئی ہوئی ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے. تو اصل بات کیا ہے کہ سورت کہاں پڑی بھی جائے اور نور نہ ملے, سورت کہاں پڑی بھی جائے اور سکینہ نازل نہ ہو, پڑی بھی جائے اور پھر ہمارے دلوں کی حالت نہ بدلے اور ہمارے عقائد اور بلیف جو ہیں وہ صحیح نہ ہو, تو اس کے یہ معنی ہے کہ ظالم تو نے چکھی ہی نہیں, ہے نا, ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں, ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. تو آئیے ایک یقین کے ساتھ, ایک ایمان کے ساتھ, ایک پیار کے ساتھ, ایک محبت کے ساتھ, بہت ہی اپنائیت اور بہت ہی طلب کے ساتھ, جیسے ایک پیاسے کو پیاس ہوتی ہے نا, وہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے وہ کیفیت جو ہے نا, ہم سورت کا جو ہے اس کی ابتدا کرتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کہہ دیتے تھے تو اتنے یقین اور اعتماد کی کیفیت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ان کے بارے میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ پھر واقعی ان کے دل کی دنیا اور ان کی زندگی جو تھی نا وہ بدل جاتی تھی. ان کے عقائد, ان کے طریقے, ان کے نظریات, سب کے سب جو تھے نا وہ بدل جاتے تھے, اور ہمارے حالات جو ہے نا اس سے بالکل جو ہے وہ مختلف نظر آتے ہیں. اس سورت کے بارے میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جسے معرف القرآن میں بیان کیا ہے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ روح المعانی میں دہلمی سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورت کہف پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے. اس سے بھی سورت کی عظمت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ سورت کی کتنی شان ہے. سورت الکہف آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نبوت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ انذار اور تبشیر ہے, ڈرانا اور خوشخبری دینا ہے, گناہوں سے ڈرانا, جہنم سے ڈرانا, حسنِ عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دینا ہے, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی ہے, بلکہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں جو ہے وہ اندھے ہو رہے ہیں, تو ان کے ایمان لانے پر آپ پریشان نہ ہوں. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملنے والی ہے. سورت کہف کی یہ جو آیات ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو تسلی دیتے ہیں. اور آپ پڑھیں گی کہ پھر اسی سورت میں جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی سنایا گیا ہے کہ حالات ایمان لانے والوں پر ہمیشہ مشکل آتے رہے اور ایمان لانے والوں نے جو ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ کی ہے, اور جب وہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کے لیے غار جو بظاہر ایک قبر نظر آتی ہے اس سے ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے کنواں ایک قبر کی طرح تھا, بس ان کو کنویں میں پھینک دیا, جیابت الغب اندھے کنویں پھینک دیا, اور وہیں سے ان کی جو ہے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا. وہیں سے ان کی مصر پر حکومت جو ہے اس کے سلسلے کی کنواں جو تھا وہ پہلی جو ہے وہ سیڑھی ثابت ہوا. بڑا خوبصورت انداز ہے سورت کہف کا, اور اس کی ابتدا میں آپ دیکھیں گی کہ اللہ رب العزت نے اپنی تعریف آپ بیان کی ہے, اور اکثر صورتوں میں ابتدا میں اور انتہا میں اللہ رب العزت نے تعریف بیان کی ہے. الحمدللہ الذی انزل, الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, الذی وہ جس نے انزل نازل کی, علی عبده اپنے بندے پر, الکتاب کتاب, तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब नाजिल की, वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। अब आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत फातिहा में भी यही था ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है इसमें तारीफ भी शामिल है और शुक्र भी शामिल है ना। तो शुक्र इंसान किन चीजों का करता है, जब इंसान नेमतें अल्लाह ताला से नेमतें पाता है, नेमतें उसको मिलती हैं, उनसे वो मुस्तफीद होता है और उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और तारीफ क्या है कि हर तरफ जो अल्लाह की बिखरी हुई निशानियां हैं उस पर अल्लाह की हमदो सना बयान करता है, और कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तारीफ कर रहा है। तो इब्तदा में है ये तारीफ अल्लाह के लिए है जो असल में इला है, लिल्ला जो इला है, अल्लाह जी वो जात, अल्लाह जी जो है ये इसम मौसूल है, ये दो जुमलों को आपस में मिलाता है और ये जो है वो बात का लिंक आगे कायम करता है। अल्लाह जी वो जात अनजला, अब यहां पे ये नहीं कहा कि नजला, बल्कि आप इस हिस्से में तीन लफ्ज पढ़ती हैं, नजला, नजला और अनजला, इन तीनों में फर्क है। नजला के मानी होते हैं कि नाजिल होना, उतरना, और अनजला के मानी होते हैं नाजिल करना, उतारना, जैसे खराजा और अखराजा में फर्क है। अब इस मिसाल से याद रखें, खराजा निकलना और अखराजा निकालना, नजला उतरना और अनजला उतारना। जब नजला आता है ना, या तंजील लफ्ज आता है नजला तंजील, तो इसके मानी होते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके दर्जा बदर्जा जो है वो उतारना। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके हालात, जरूरियात, वाकयात के मुताबिक जो है उसको नाजिल किया, एकदम नहीं कुरान नाजिल किया। अहले मक्का इस पर एतराज करते रहे। तो यहां बे नजला नहीं है और ना ही नजला है, बल्कि अनजला है कि जिसने नाजिल किया, जिसने उतारा, अला अब्दिही। बड़ी खूबसूरत निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पर दी है, और वो निस्बत क्या है कि अपने बंदे पर नाजिल किया। इंसानियत का कमाल है ये अब्दियत। इंसान जो है ये उसका जो है वो कमाल है कि जब वो अल्लाह का बंदा बन जाए, वो अल्लाह की बंदगी करे। तो यहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द ही नहीं बल्कि अब्द ही अल्लाह ताला ने अपने बंदे की निस्बत जो है वो यहां पर की है कि जिसने अपने बंदे, खास बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ये किताब नाजिल की। अब आप देखें कि अल किताब से मुराद कुरान मजीद है, क्योंकि अल इस्लाम जो है उसको खास कर देता है ना, तो आम किताब मुराद नहीं है, कुरान मजीद, जिसने अपने बंदे पर ये किताब, ये कुरान मजीद जो है ये नाजिल किया। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्ते अब्दियत का जिक्र किया है ताकि आपकी भी और कुरान मजीद की भी अजमत का इजहार हो। अपने बंदे पर कुरान जैसी अजीम किताब नाजिल की, अर्रहमान अल्लमल कुरान, बहुत ज्यादा रहम करने वाले ने जो है वो कुरान जैसी दौलत से नवाजा, जिसने कुरान सिखाया। यूं तो अल्लाह ताला की नेमतों की बारिश है, कायनात में अल्लाह ताला की नेमतें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज्जिबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो अब यहां पर जो है वो सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि तारीफ अल्लाह के लिए है, इसके मानी ये है कि अल्लाह ताला की तारीफ हर हाल में है, अल्लाह ताला लायक हमदो सना है। दूसरी बात, शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह रखकर इंसानों को ये तालीम दी कि इब्तदा में भी अल्लाह की तारीफ करो, इंतहा में भी अल्लाह की तारीफ करो। इंसानों को ये तालीम दी कि हर हाल में अल्लाह की तारीफ करते रहो। दूसरी बात, तारीफ क्यों की जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बंदों की हदायत के लिए कुरान जैसी अजीम किताब नाजिल की, जो अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि अर्रहमान ये अल्लाह का जो है यहाँ पे मुबालगा है, यहाँ पे अल्लाह के लिए जो सिर्फ अर्रहमान की इस्तेमाल की गई है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला, मुबालगा का सीगा है ना सूरत अर्रहमान के शुरू में भी, अर्रहमान अल्लमल कुरान, तो वहां पे भी मुबालगा है कि बहुत ज्यादा रहम करने वाले ने कुरान जो है वो सिखाया। तो ये अल्लाह की अजीम तरीन नेमत है। तीसरी बात के बंदे पर नाजिल की, किसी फरिश्ते पर नहीं, किसी नूर पर नहीं, अब्द पर, और अब्द कौन, जो अल्लाह का बंदा है। तो इससे भी कुरान की अजमत का पता चलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी सिफ्ते अब्दियत का पता चलता है, और ये बात भी सामने आती है कि आप अल्लाह के बंदे हैं और यही आपका आला मकाम है। आपको अल्लाह का बेटा नहीं कहना चाहिए, आपको नूर नहीं कहना चाहिए, जैसे नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा कि वो इब्नुल्लाह है, तो ये अकीदा शिर्क है। फिर एक और अहम बात, वलम यजअल लहू इवजा, और इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। इवजा लफ्ज जो है ऐन वाव जीम जो है इसके मानी होते हैं कि किसी चीज के अंदर कोई टेढ़ हो, कजी हो, झुकाव पाया जाता हो, उसमें कोई जो है वो जैसे होता है झुकाव पाया जाता हो, कजी या पेच या झुकाव पाया जाता हो, तो कहा कि इसके अंदर जो है कोई झुकाव नहीं पाया जाता। अब आप देखेंगे ये जो टेढ़ है या जो कजी है ये दो किस्म की होती है। एक होती है जो आपको सामने खुली आंख से नजर आती है, जैसे दीवार टेढ़ी है या कोई इमारत टेढ़ी है, किसी चीज में भी जो टेढ़ है आपको नजर आए, और एक टेढ़ है नजर नहीं आती, और उसका ताल्लुक जो है वो अकीदे से होता है या नजरिए से होता है, थ्योरी से होता है। तो यानी अवाजा के बारे में कहते हैं कि वो टेढ़पन जो नजर आए, और इवाजा के बारे में आते हैं कहते हैं कि ये मानी के लिहाज से खास तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लफ्ज दोनों तरह इस्तेमाल होता है, मादी टेढ़ जो नजर आता है और दूसरा हिस्सी जो महसूस किया जा सकता है। जैसे आजकल जो है ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का जमाना खत्म नहीं हुआ, और जैसे ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन्नबीयीन जो है वो नहीं थे, बल्कि अब भी नबूवत का जो है वो सिलसिला जारी है, और या ये कहना कि जो मॉर्गेज है ये सूद नहीं है, रिबा नहीं है, या ये कहना कि आज के दौर पर इस्लाम पर अमल नहीं हो सकता, या कुरान की अपनी मनमानी जो है वो तफसीर करना, अहदीस से, सीरत से, सहाबा की जिंदगी से कुरान को ना समझना। तो फिर क्या है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात मौके की मुनासबत से जो है वो उसकी ताबीर जो है वो करता चला जाता है, तफसीर करता चला जाता है। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि कुरान मजीद के अंदर ना तो इसके अल्फाज में कोई टेढ़ है, ठीक है, और ना ही लुगवी एतबार से इसके अंदर कोई नक्स पाया जाता है, इसके मानी के अंदर कोई तजाद नहीं है। ये कुरान मजीद जो है ये अपने बयान, अपने मानी, अपने अल्फाज, और इस जबान के लिहाज से देखें तो कुरान मजीद की जबान अरबी मुबीन है। कुरान में बार बार आपने पढ़ा कि अरबी मुबीन है, और रहनुमाई के एतबार से देखें तो ये सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है, सिर्फ सिरात नहीं, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता कुरान मजीद इसकी तरफ जो है वो रहनुमाई करता है। कुरान लोगों को हक और सदाकत की तरफ बुलाता है, अल्लाह की पहचान देता है, और कुरान जो है वो इंसान की अपनी जात से, आफाक कायनात से, बल्कि दुनिया के हर गोशे में जो है वो कुरान जो है मुख्तलिफ तरीकों से हमारे सामने दलाइल रखता है, ताकि इसको समझकर लोग अपनी जिंदगियां जो है उसको बदल सकें। आपने जो है वो पीछे पढ़ा सूरत बनी इसराइल में, इन्ना हाजल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, कि बेशक ये कुरान इस रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, वो रास्ता जो कि सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ कुरान रहनुमाई करता है। तो एक आयत के अंदर हमारे सामने जो हैं वो चार बातें आई। पहली चीज अल्लाह की तारीफ, दूसरी चीज जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्दियत जो है, अब्दियत का मकाम, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब्दियत का आला मकाम कमाल। अब्दियत जो है अल्लाह का बंदा बन जाना, ये इंसानियत की मेराज है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो है कुरान की अजमत, आम किताब नहीं है, अल किताब है। चौथी बात जो है वो ये है कि कुरान मजीद जो है इसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है। आप देखें कि आयत नंबर 2 के आगाज में कहा कि कय्यमन قَيِّمًا لِيُنْزِرَ بَاسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا। قَيِّمًا قَاف وَاو مِيم اس کا روٹ ہے، اور قَيِّمًا کے معنی ہوتے ہیں کہ سیدھی، درست رکھنے والا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قیم کہا، اور قیم جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ یہ قرآن کی صفت ہے۔ اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ قیم ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قیم لفظ جو ہے یہ بہت وسیع معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ قیم جو ہے اس کے معنی ہے نگران، محافظ۔ تو قرآن کیسے نگرانی کرتا ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں، سابقہ آسمانی کتابیں، قرآن ان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی کا کام کرتا ہے۔ قرآن میں سابقہ تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے، اس کے اندر لوگوں نے جو تبدیلی کر لی تھی، ملاوٹ کر لی تھی، تو قرآن جو ہے وہ ہر قسم کی افراط اور تفریط کجی سے جو ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے۔ اس میں دوسروں کو استقامت پر جو ہے وہ رکھنے والے جو ہیں وہ عقائد موجود ہیں، یہ دوسروں کو استقامت پر رکھتا ہے، اور بندوں کی جو ضروریات ہیں ان کی نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو قرآن نہایت ہی معتدل کتاب ہے، افراط اور تفریط سے پاک، پچھلی آسمانی کتابوں پر غالب، ان کا خلاصہ قیمن۔ تو اس کی پہلی صفت جو ہمارے سامنے آئی تو کیا ہے کہ خود سیدھا ہے۔ قیمن کے معنی کیا ہے؟ کہ خود سیدھا ہے۔ نمبر 2 سیدھا رکھنے والا ہے۔ نمبر 3 معتدل ہے۔ سورۃ الانعام میں آیت 115 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو معتدل کے نام سے یاد کیا ہے۔ سورۃ البینہ آپ نے 30ویں پارے میں حفظ کر لی ہے الحمدللہ، اس میں کہا کہ کتب قیمہ ہے نا۔ تو یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ قیمن ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے۔ اس میں جو ہے وہ بندوں کے لیے دین اور دنیا کی جو مصلحتیں ہیں یہ اس کی رعایت کرنے والا ہے، یہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہیں۔ مثلا زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں، مثلا میاں کے حقوق اور شوہر کے حقوق اور بیوی کے، اس کے اندر ایک اعتدال ہے بیوی کے اور والدہ کے، یعنی ایک مرد کے لیے بیوی کے حقوق کیا ہیں اور والدہ کے کیا ہیں، اس میں ایک اعتدال ہے۔ بچوں کے اور والدین کے، اس میں ایک اعتدال ہے۔ اور آپ غور کریں کبھی بیٹھ کر کہ بڑا خوبصورت ہے یہ دین۔ اب شوہر کے حقوق تو بہت رکھے، لیکن اس کو خدا تو نہیں بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، حقیقی نہیں، مجازی خدا ہے۔ مجازی خدا بھی نہیں ہے نا، مطلب خدا تو ایک ہی ہے، ایک اللہ ہے۔ تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ قرآن مجید کی کسی چیز کو لے کے چل پڑے۔ آپ معاشی نظام کو دیکھ لیں، ایک زمانے میں لوگوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا، ایک انتہا تھی، فرد کی ملکیت بالکل ختم کر دی۔ رشیا اس کی بڑی مثال ہے۔ اور اس سے کیا مطلب ہے کہ فرد کی ملکیت ہے ہی نہیں، سب کچھ گورنمنٹ کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے۔ اچھا 2 بچے خوشحال گھرانہ، اور یا پھر جو ہے وہ یہ کہا کہ سارا حکومت کے پاس ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کیا نعرہ لگایا گیا کہ جاگیرداری نظام ہے، جس میں جو ہے وہ ایک فرد کو ہی سب کچھ دے دیا گیا۔ इस्लाम दोनों के बीच में है, जिसमें फर्द को बिल्कुल महरूम भी नहीं करता, उसको विरासत भी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम जो है वो क्या करता है कि तकसीम दर तकसीम का निजाम भी जो है, माल की तकसीम दर तकसीम का निजाम भी राइज किया। कैसे? कि मरने के साथ ही विरासत की तकसीम, और दौलत जो है चंद हाथों के अंदर जो है वो जमाना हो जाए। जो इस्लाम के सिस्टम में ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर तर होता चला जाए और गरीब गरीब तर होता चला जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि जो अमीर है तो जूही जो है अपनी जिंदगी में है तो जकात भी देंगे और इन्फाक और सदका खैरात भी। और उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक और अब्दुर्रहमान बिन औफ और उमर फारूक और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम और बेशुमार सहाबा की मिसालें मौजूद हैं जो रोल मॉडल के तौर पर हैं, खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी तरफ क्या है कि ये सब करने के बाद भी अगर किसी के पास जायदाद है तो वो भी तकसीम होगी उसकी वफात के फौरन बाद ही। तो इससे क्या बात पता चलती है कि इस्लाम के यहाँ जो है वो ऊपर से नीचे वालों के पास जो है वो दौलत की तकसीम का बहाव है, दौलत की गर्दिश का निजाम क्या है कि अमीर से गरीब की तरफ उसका रुख मोड़ दिया गया। हमारे यहाँ क्या है, आम देखें सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में या जागीरदाराना निजाम में देखें कि उसमें क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो है तबकाती निजाम कायम हो चुका है, अमीर अमीर तर होता चला जाता है और गरीब जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होता है। आप इसको किसी भी जगह पे देख लें कि शोहर को अगर मर्द को कवाम बनाया तो औरत के नीचे उसके पांव के नीचे जो है वो जन्नत रख दी, उसके कदमों के नीचे कहा कि माँ के हक जो है वो बाप की निस्बत जो है वो तीन ज्यादा है, क्योंकि वो परवरिश में ज्यादा तकलीफ उठाती है, वो पेट में रखती है, नौ माह रखती है, जोफ पे जोफ उठाकर पेट में रखा और फिर दूध पिलाने में दो साल लगे। तो आप इसको देखेंगी, आप जितना इस पर गौर करेंगी तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम दीन फितरत है, कुरान जो है मोतदिल दीन है। इस्लाम कुरान इस्लाम को पेश करता है ना सिराते मुस्तकीम को, तो ये मोतदिल दीन है। कय्यमन, तो कय्यमन भी किसकी सिफत है, ये कुरान की सिफत है। तो पहली कुरान की सिफत क्या थी, अल किताब, खास किताब। दूसरी वलम यजअल लहू इवजा, किसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है। तीसरी कय्यमन। अब आगे जो है ये बताया जा रहा है कि जिसके अंदर टेढ़ नहीं रखी इसको कय्यमन जो है वो क्यों जो है वो बनाया, ले युनज़िरा बासन शदीदम मिन लदुन्हु, ले युनज़िरा फरमाया के ताके डराए, ताके डराया जाए। नून जाल रा नजरा, और इसी से नजीर है, नजीर जो है इसके मानी क्या होते हैं कि लोगों को मोहब्बत और शफकत से डराना। एक होता है डाकू का डराना जो जो है वो गन पॉइंट पर डराता है या कोई छुरा वगैरह दिखाकर डराता है, और एक होता है कि किसी को वैसे डराया जाए, और एक होता है जैसे वालदैन बच्चों को डराते हैं मोहब्बत और शफकत के साथ कि पढ़ लो तुम्हारा अपना फायदा है, ये कर लो आइंदा जिंदगी में तुम जो है बड़े सुखी रहोगे। तो यहां पे भी यही बात बताई जा रही है कि ताके डराया जाए, लाम लामे इल्लत है, यहां कुरान का मकसद बताया जा रहा है, ले युनज़िरा ताके डराए, बासन शदीदन, बास जो है बा हमजा सीन, ये लफ्ज जो है ये अजाब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, भूख के लिए भी आता है। आप ये लफ्ज जो है पहले भी मुख्तलिफ मानी में इस लफ्ज को पढ़ चुके हैं। तो क्या फरमाया कि ताके डराए, बासन शदीदन, सिर्फ बास ही नहीं शदीदन, सख्त सख्त जो है वो अजाब से, यहाँ पे ये अजाब के मानी में आया है, ताके कुरान मजीद जो है सख्त सजा से होशियार कर दे, बता दे। मिल्ला दुन हो, अब आप देखें कि यहाँ पे मिल्ला दुन जो है इसके मानी क्या है, मिन के मानी तो से के हैं, और लदुन जो है इसके मानी है कि अल्लाह की तरफ से, उस अल्लाह की तरफ से कुरान मजीद नाजिल होने वाला है जिसके लिए शुरू में आपने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान मजीद जो है ये इसके जरिए से क्या किया जाए कि डराया जाए, सख्त अजाब से डराया जाए, मिन लदुन्हु अल्लाह की तरफ से, اللہ کی جانب سے جو آخرت میں سخت عذاب آنے والا ہے اس کی طرف سے لوگوں کو ڈرایا جائے. باسن شدید ملتن ہو, وہ سخت عذاب جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو ملنے والا ہے جب قیامت آئے گی. تو یہاں پہ پھر کن لوگوں کو ڈرایا جائے گا جنہیں سخت عذاب ملنے والا ہے؟ کافرین. تو مفسرین کہتے ہیں کہ پھر اس سے مراد مکذبین ہیں یا پھر کافرین ہیں. پھر فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ خوشخبری دے دے ایمان لانے والوں کو. المومن واحد ہے اور المومنین جو ہے وہ اس کی جمع ہے, اور باشین را جو ہے ایسی خوشخبری کو کہتے ہیں کہ جسے سننے کے بعد چہرہ جو ہے وہ چمک اٹھے, چہرہ جو ہے تمتما اٹھے, چہرے سے خوشی کا پتہ چلتا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ ایمان لانے والوں کو جو ہے یہ خوشخبری دے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, اب یہاں دیکھیں پھر الَّذِينَ جو ہے یہ اسم موصول ہے, الَّذِي پیچھے آپ نے واحد پڑھا تھا یہ اس کی جمع ہے. تو کن لوگوں کو خوشخبری دی جائے گی؟ ایمان جو ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ایمان کی مثال بیج جیسی ہے, میں اکثر یہ مثال دیا کرتی ہوں. ہاں, وہ عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اگر بیج جو ہے اس کو کسان بو تو دے لیکن اس سے پودا نہ نکلے تو کہتے ہیں کہ بیج بیج نہیں تھا, ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے. الذین یعملون الصالحات, جو نیک عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا, کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. تو عمل صالح کرنے والے جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, بہترین اجر جو ہے اس کی خوشخبری دی جائے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید شرک کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے, مومنین اور صالحین کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. اور ان لہم اجرن حسنہ سے مراد کیا ہے کہ جنت, جنت کی نعمتیں, رب کی رضا. ما کسین فیہ ابدا, اور اب یہاں پر جو ہے پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں ما کسین, کہ وہ لوگ ٹھہریں گے, وہ لوگ رہیں گے. فیہ اس میں, تو لوگ جو ہیں اس میں کتنی دیر رہیں گے؟ ابدا, ہمیشہ کے لیے. یہی اس کا روٹ ہے میم کاف سا, اور اس کے معنی ہے کہ انتظار میں ٹھہرنا. تو ماکس جو ہے یہ واحد ہے اور ماکسین جو ہے یہ اس کی جمع ہے. تو ماکسینا ٹھہرے رہنے والے, اور جو ہے آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی چیز ٹھہری رہنے والی ہوتی ہے نا, تو اس سے جو ہے اس کے اندر ہمیشگی کے معنی جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہیں گے, وہ ہمیشہ رہیں گے. فی ہی اس میں, اور اس سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ آخرت میں جو ان کو اجر ملے گا, آخرت میں جو ان کو جنت ملنے والی ہے, اس میں وہ ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ماں کے سین کے اندر بھی ہمیشگی کے معنی جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہاں پر اللہ رب العزت نے ساتھی جو ہے وہ ابدا کا لفظ بھی استعمال کر لیا ہے نا. تو معنی کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ, اور یہ جنت کی صفت یہاں پر بتائے گی. کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جو چیز بہت اچھی ہونا وہ اس کو ہمیشہ چاہتا ہے. تو جنت کی نعمتیں جو ان کو ملیں گی اعمال صالح کے نتیجے میں, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور قرآن کیا کرے؟ وَيُنذِرَ, اور ڈرا دے. الَّذِينَ, ان لوگوں کو, یہ اسم موصول ہے, قالو جو کہتے ہیں کہ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس میں عیسائی بھی شامل ہیں, اس میں یہودی بھی شامل ہیں, اس میں مشرقین عرب بھی شامل ہیں. اور یہ شرک کی ایک قسم ہے. مشرقین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے, اور اسی طرح جنوں اور دیوی اور دیوتا کے ذریعے وہ شرک کرتے. یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے اور عیسائی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور آج کا وہ مسلمان بھی شامل ہے جو شرک کرتا ہے, اپنی خواہشات نفس کو خدا بناتا ہے, اپنے خاندان کی رسم و رواج جو ہے اس کو سینے سے جو ہے وہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے. اور بہت سے عمل ایسے ہیں کہ قرآن حدیث سے کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی, رسول اللہ کی زندگی سے کوئی بات نہیں پتا چلتی, لیکن لوگ ہیں کہ اس پر جو ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کو ڈرایا جائے, ان کو آگاہ کیا جائے جو شرک کرتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا, ولد لفظ اسم جنس ہے, ویسے تو بیٹے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, واحد ولد ہے جمع اس کی اولاد ہے, لیکن ولد لفظ بھی جمع کے لیے آ جاتا ہے اور اسے بیٹیاں بیٹے اور اولاد سب مراد ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, تو یہ جو انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, تو اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, اس بات کا انہیں کوئی علم نہیں ہے, وَلَا لِآبَائِهِمْ, اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی بنیاد نہیں ہے, بلکہ اپنی عقیدت مندی کے غلو میں یہ من مانا حکم لگا رہے ہیں, اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ کیسی گستاخی کی بات کرتے ہیں. تو لی آبائہم, اب واحد ہے اور ابا اس کی جمع ہے, روٹ ہے حمزہ باو, ابا اجداد کے لیے باپ دادا کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبورت کاف با را, اور ویسے کاف با را جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بڑا, اسی سے کبیر ہے, اسی سے اکبر ہے جو اسم تفضیل ہے, اور کبورت کے معنی ہے یہاں پر سخت بات, سخت سزا والی بات, بڑی ہی شدید بات, انہونی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں. کلمتن, کلمہ جو ہے اس کے معنی ہے بات, تخرج من افواہہم, جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, فم واحد ہے, افواہ اس کی جمع ہے, اس کا روٹ ہے فا و ہا, اور اس کے معنی کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے منہ سے جو ہے وہ باتیں نکالتے رہتے ہیں, جھوٹ بکتے رہتے ہیں, شرکیہ باتیں کرتے ہیں جو عقلا ناممکن ہیں. کبورت کلمتن تخرج من افواہہم, تو یہ جو یہ کہا نا کہ ان کے منہ سے بڑی بات نکلتی ہے, ان یقولون الا کذبا, نہیں یہ کہتے مگر جھوٹ. تو یہ جو کہا کہ یہ سخت بات کہتے ہیں اور یہ جھوٹ کہتے ہیں, تو اشارہ کس طرف ہے, قالوا اتخذ اللہ ولدا, تو اتنا ہی کافی تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان لوگوں کو بتایا جائے, ڈرایا جائے, سمجھایا جائے کہ یہ شرکیہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے, لیکن اسی بات کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے آگے یہ سارے جو ہے یہ آیت نمبر 5 میں بات کو جو ہے وہ پھر سے سامنے رکھا گیا. تو دراصل آیت نمبر 5 جو ہے یہ مشرکین کی اندھی تقلید جو ہے اس پر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہے. مشرکین یہ شرکیہ کام جو کرتے تھے یہ کیوں کرتے تھے, نمبر 1 جہالت کی بنا پر, نمبر 2 توہم پرستی, نمبر 3 باپ دادا کی اندھی تقلید. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسے جو ہے وہ انتہا درجے کی برائی قرار دیا, کہا جھوٹ بکتے ہیں, ایسے ہی اپنی زبانوں سے باتیں جو ہے یہ نکالتے رہتے ہیں. آیت نمبر 6, آیت نمبر 6 جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر محبت تسلی دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس بات پر افسردہ نہ ہوں کہ آپ پر یا قرآن پر یہ ایمان نہیں لاتے. کن چیزوں پر ایمان لانے کی بات ہو رہی تھی, ابھی تک پیچھے آپ نے کن چیزوں پر ایمان لانے کے بارے میں پڑھا, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں پڑھا کیونکہ انزل علی عبدہ, آپ نے قرآن پر ایمان لانے کے بارے پڑھا الکتابہ, آپ نے جو ہے آخرت کے بارے میں پڑھا کیونکہ یہاں پہ جو ڈرایا گیا اور جو خوشخبری دی گئی تو اس میں جہنم اور جنت کا جو ذکر ہے تو یہ عقیدہ آخرت کی بات ہے. تین باتیں ہو گئی, چوتھی جو ہے قال اتخذ اللہ ولدا, عقیدہ توحید آ گیا ہے نا. تو آیت نمبر 5 میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پس شاید تو فا, بس اب فا جو ہے ساری بات کو سمیٹ رہا ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ انکار کر رہے ہیں, آپ توحید آخرت رسالت قرآن جو ہے اس کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اس کے منکر ہیں. تو فَلَعَلَّكَ, کیا پس شاید آپ باخعن, باخعن جو ہے اس کے معنی ہے کہ کسی کا اپنے آپ کو ذبح کر لینا. تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں, کیا آپ اپنے آپ کو ذبح کر لینے والے ہیں, نفس کا اپنے نفس کو, علی آثارہم, حمزہ فا را جو ہے یہ اس کا روٹ ہے اور قدموں کے نشان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یا یہ کہ کسی کے پیچھے. تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ذبح کر لیں گے, کیا ان کے پیچھے آپ جو ہیں وہ اپنی جان کھو دیں گے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہیں لاتے. بهذا الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے, کہ یہ قرآن مجید جس میں ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی عوج نہیں ہے, قیمن ہے, اتنی بہترین کتاب اور اتنا بہترین قرآن مجید, اس پر یہ ایمان ہی نہیں لاتے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تسلی دینے کا انداز جو ہے یہ بڑا ہی خوبصورت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسفہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. اسفہ جو ہے اس کے معنی ہے رنج کرنا, غم کرنا. تو آپ جو ہیں وہ غم کے مارے رنج کر کے آپ اپنے آپ کو ذبح ہی کر ڈالیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنے کسی کے غم میں اندر ہی اندر گھلا جاتا ہے, یوسف کا روٹ بھی یہی ہے. تو اسفہ, تو آپ غم کے مارے ان کے پیچھے اپنی جان کھو دینے والے ہیں کہ یہ قرآن کی تعلیم پر ایمان نہیں لاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا انداز بہت ہی پیارا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو رسالت کا فریضہ تھا اس کا کتنی شدت سے احساس تھا, اس کی ادائیگی کا احساس کتنا شدید تھا. آپ دعوت کے کام کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے تھے, صبح شام رات دن بس ایک ہی غم تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت قبول کر لیں, لوگ اللہ کی طرف جو ہے وہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات جو تھے وہ دعوت دیتے تھے. آپ نے اپنے وسائل, اپنی قوتیں, اپنی جوانی, اپنی اولاد, اپنا گھر, سب کچھ اس میں جو ہے وہ لگایا ہوا تھا, کپایا ہوا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں. اور آپ کی انتہائی شدید خواہش تھی کہ مکہ کے سرداران قریش اور آپ کے خاندان کے لوگ اور ارد گرد سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیں. اس کی وجہ کیا تھی, آپ کیوں ایسا چاہتے تھے؟ دو وجوہات تھیں, ایک تو یہ کہ لوگ اللہ کی گرفت سے بچیں, اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچیں, کیونکہ نافرمانی اور گناہوں کے نتیجے میں جو ہے وہ اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ اسلام کو قوت نصیب ہو اور مسلمانوں پر جو سختی ہو رہی ہے اس میں کمی واقع ہو جائے. تو اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی یہ روایت بھی ملتی ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جل جانے کے لیے. وہ کوشش کرتا ہے یہ کسی طرح آگ سے بچے مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے. ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو. پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ پورے قرآن کا مرکزی آئیڈیا ہے. ये आयत मकसद जिंदगी देती है, ये गफलत की नींद से बेदार करती है, ये जो नींद के माते हैं उनको पानी के छींटे देती है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐ वो लोगों जो दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो रहे हो, जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो, ये दुनिया की रंगरलियों में फंस कर गुनाह करते हो, शहवत और ख्वाहिशात जिन पर गालिब आ जाती हैं और अल्लाह को भूल जाते हो, याद रखो इन्ना जालना, बेशक हमने बनाया, मा अलल अर्दी, जो कुछ जमीन पर है। अब आप देखें कि मा अलल अर्दी बड़ा ही जामे जो है वो अंदाज है, तो रुए जमीन पर जो कुछ है इसमें हैवानात, जमादात, नबातात, मादनियात और दीगर मदफून खजाने, और जो है वो आसमान और आसमान के अंदर, जमीन और जमीन के अंदर, और आसमान और जमीन के बीच में, और इंसान, और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया है, क्या है? जीनतन, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको मैंने जीनत बनाया है। जीनत जो है इसके मानी क्या होते हैं? जीनत के, जीनत जो है ये लफ्ज आराइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खूबसूरती के लिए, रौनक, जीनत, आराइश, ब्यूटी। जैसे औरतें मेकअप करती हैं तो क्या है कि वो जीनत है, लेकिन आप देखें मेकअप कितनी देर के लिए रहता है, पसीना आता है तो मेकअप जो है वो धुलने लगता है, आप वुजू कर ले तो मेकअप जो है वो चला जाता है, आप जो है वो मुंह धो ले तो मेकअप चला जाता है। इसी तरह बहार, ये जीनत है, बहार कितने दिन के लिए रहती है? जवानी, ये इंसान की जिंदगी की जीनत है, कितने दिन के लिए रहती है? फूल जो है जब वो खिलते हैं, महकते हैं, और खिला हुआ फूल कितने दिन के लिए रहता है, कितनी देर के लिए रहता है? दिन तो दूर की बात है ना, कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, है ना। तो जीनत, आराइश, रौनक, हुसन, खूबसूरती, तो हमने जो कुछ जमीन पर है इसको खूबसूरती के लिए बनाया, आराइश बनाया, लहा इसके लिए, लहा की जमीर जमीन के लिए आया है, आई है कि जमीन की इसको ब्यूटी बना दिया। क्यों? ये है असल चीज, ली नबलुआ हूं। अब पूरी कायनात को अल्लाह ने क्यों बनाया? कहा कि ये इसलिए बनाया, ली नबलुआ हूं, नबलुआ हूं जो है लाम, जो है लामे इल्लत है, वजह बताई जा रही है, और नून जो है हम, बालम वो जो है ये रूट है, बालम या भी हो सकता है जिसका मतलब है पुराना करना, जैसे कपड़ा इस्तेमाल कर करके पुराना हो जाता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दूध जो है जब दही बनता है उसमें बलोनी डालते हैं तो फिर उसमें आप देखेंगे मदानी जब चलती है, बलोनी जब उसको खूब बलोती है, आजमाइश जब होती है दूध की, तो फिर दूध में से मक्खन अलग हो जाता है और लस्सी अलग हो जाती है। इसी तरह सोना जो है जब भट्टी में डालकर उसको पकाया जाता है, उसको तपाया जाता है, तो उसका खोट और खरा अलग हो जाता है। तो इब्तला, ये इम्तहान का जो है वो सबसे सख्त दर्जा है कि किसी के ईमान का पता चले कि वो सच्चा है या झूठा है, वो मुखलिस है या उसके अंदर खोट पाई जाती है। तो कहा कि ये सब कुछ, ये जो दुनिया की जीनत है, ये जो हुसन है, ये सब इसलिए बनाया ताकि इनकी आजमाइश की जाए। लिनबलुआ हुम, हुम की जमीर में रसूल अल्लाह के जमाने के लोग आ गए, अब्बास के दौर के लोग आ गए, और आज के दौर के, और रहती दुनिया तक, तो तमाम लोगों के लिए जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी आजमाइश के लिए इसको बनाया। अच्छा, आजमाइश किस चीज में है, इम्तहान किस चीज का है? अय्युहुम अहसनु अमला, कि कौन ज्यादा अच्छे अमल करने वाला है। अहसनु अफअलु के वजन पर है, बेस्ट अमल करने वाला कौन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि अक्सरु अमला, के ज्यादा क्वांटिटी नहीं मांगी कि ज्यादा अमल करने वाला कौन है। जैसे आप कहती हैं कि मैंने सारी रात जो थी वो तहज्जुद में और नवाफिल में गुजार दी, तो मकसूद ये नहीं है कि आपने कितने नफल पढ़े, जितने भी पढ़े उनमें इखलास कितना था, क्या वो बेहतरीन थे, क्या वो अच्छे थे, आपने कितने डॉलर अल्लाह के रास्ते में दिए, लेकिन जितने भी दिए क्या उनके अंदर इखलास था, कोई खोट तो नहीं थी। आपने जिंदगी भर कितनी मेहनत और मुशक्कत की, लेकिन असल बात क्या है कि जो भी मेहनत मुशक्कत की, जो आपने अमल किए, क्या वो अच्छे अमल थे, अल्लाह के दरबार में पेश किए जा सकते हैं? तो मुफस्सरीन कहते हैं कि आसन अमल जो है वो अमल होता है जिसमें इखलास पाया जाए, इखलास नीयत नंबर वन, नंबर दो ईमान हो, नंबर तीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। बाज अमल देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, फलां जो बेटी है वो अपने बाप की 20वीं बरसी जो है वो मना रही है, और आप कैसी बेटी हैं, आप तो कुछ भी नहीं करती। तो अब आप देखें कि जाहिर तौर पर क्या लगता है कि जो है वो कितनी इसको अपने माँ बाप से मोहब्बत है ना, 1 साल नहीं 20 साल हो गए तो ये बरसी मनाती है। वो भी मैंने पिछले दिनों पाकिस्तान फोन किया तो पता चला रिश्तेदारों में कि फलां जो है वो मेके गई हुई है, क्योंकि वो अपने बाप की उसने खत्म दिलाना था और बरसी मनानी थी तो इसके लिए वो गई हुई है। तो अब आप देखें कि बाकी लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इसका अमल तो ज्यादा अच्छा है और हम तो बड़े पीछे रह गए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बरसी मनाना क्या है, एक तरह का सोग मनाया जाता है ना साल हा साल तक, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें कोई हदीस, कोई सुन्नत, कोई सीरत से बात पता चलती है कि आपने ऐसे बरसी मनाई हो या मनाने का कहा हो या आपकी बरसी मनाई गई हो? 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं है। हाँ, बीवी के लिए है कि वो सोग करे, अपने शोहर के लिए 4 माह 10 दिन, लेकिन सिर्फ बीवी, बाकी 3 दिन सोग है, इससे ज्यादा सोग नहीं है। और वैसे वो फिर मेके से ससुराल से मेके जाना और जाकर बकायदा एक ऐसी महफिल का इनेकात करना जिसकी कुरान और सुन्नत से हमें कोई दलील नहीं मिलती, तो आप बताएं कि ऐसा करना जो है ये अबाओ अजदाद की या अपनी ख्वाहिशात की पसंदी तकलीफ के अलावा और क्या है? आप घर बैठे वालदैन के रास्ते में, वालदैन के लिए दें अल्लाह के रास्ते में, आप सदका खैरात करते रहे उसी डेट और उसी साल की एक दिन का जो है उसका एहतमाम करना, या आखिर क्यों जरूरी है? तो बेहतरीन अमल करना, अच्छे अमल करना, तो ये नहीं कि बस अंधाधुंध करते जाए, बल्कि ये कि वो बेहतरीन होने चाहिए। आखिरी आयत क्या है? इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा। फिर आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। वह इन्ना, और बेशक हम, ला जो है इसके मानी क्या है, ला के जैसे ताकीद के लिए आ गया, जाइल जाला से है, ये फाइल है, इसम फाइल का सीगा है, बनाने वाले, करने वाले, अलबत्ता हम कर डालने वाले हैं, मा अलैहा जो कुछ जमीन पर है, खाकी जमीन फिर जमीन के लिए आई है, सईदन स्वाद ऐन दाल साफ मैदान के लिए आता है, बुलंदी के लिए भी सऊद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर जो है ये बात कही जा रही है कि हम जो हैं ये जो जमीन है इसको बना देने वाले हैं, सईदन साफ मैदान, जुरुजा जीम राजा इसके मानी होते हैं चटियल बंजर। असल में जीम राजा के मानी है काट देना, किसी चीज को खाकर साफ कर देना, जैसे मैदान होता है, ठीक है, फील्ड है, खेतियां हैं, वो सब्जे से नबातात से भरी हुई हैं, लेकिन फिर क्या किया कि उनको काट कर खत्म कर दिया गया, किसान ने काट दिया या परिंदों ने, जानवरों ने उसको खाया और फिर उसको जो है वो खत्म कर दिया। तो जुरुस के मानी है बे आबो गया जमीन, ऐसी जमीन जिस पर कोई पौधा नहीं है, कोई नबातात नहीं है, कुछ भी नहीं है उस पर। तो फिर इसके तर्जुमे में बाज लोग कहते हैं कि बंजर, बाज कह देते हैं कि चटियल, बाज ये कह देते हैं कि बिल्कुल ही जो है वो साफ हमवार। तो ये जो आयत है, आयत नंबर 7 और 8, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ये बात बताई जा रही है, उनको बताई जा रही है लेकिन कुफार को सुनाई जा रही है। अहले मक्का अमीर थे, जो उनके सरदार थे खास तौर पर, वो बड़े अमीर थे और वो कहते थे कि देखें दुनिया के अंदर कामयाब तो हम है ना, तो अल्लाह ताला ने बताया कि ये दुनिया का सरो सामान जिसकी दिल फरेबियों पर तुम लोग जो है वो अंधे हो रहे हो और दुनिया की جو یہ نعمتیں ہیں, یہ جو درخت, نہریں, پھول, پتیاں اور یہ ستارے جو جگمگ کرتے ہیں, یہ مال, اولاد, یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے دنیا کو بھر دیا ہے, یہ دیکھنے کے لیے بھرا ہے کہ کون جو ہے رنگ رلیوں میں اس کی پھنس جاتا ہے اور کون اپنی شہوت پر جو ہے وہ شہوت جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس پر اس کے تحت بہنے کی بجائے اپنی شہوت اور خواہشات پر غالب آ کر اللہ کی اطاعت اور بندگی کو ترجیح دیتا ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کو ختم کر دے گا اور زمین بے آب و گیا میدان بن جائے گی اور وہ دن ہوگا قیامت کا. اب آپ دیکھیں, آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ جو ہیں کیا اپنی جوانی کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں, بھول جاتی ہیں کہ پھر بڑھاپا آئے گا؟ آپ جو کچھ دولت آپ کے پاس ہے, آپ دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہیں یا سوچتی ہیں کہ حلال اور حرام میں تمیز ہونی چاہیے؟ آپ بستر پر لیٹتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ بھول جاتی ہیں کہ مجھے اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی ہے, فجر پڑھنی ہے. آپ کیا کرتی ہیں, آپ اپنے وقت کا استعمال جو ہے وہ کیسے کرتی ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ 8 جو آیتیں ہیں اس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ کا کام ہے آپ نذیر اور بشیر بن کر لوگوں کو بتاتے رہیں, لیکن اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنی جان ہلکان نہ کر لیں, آپ پریشان نہ ہو, آپ اپنے آپ کو افسوس کر کے ذبح نہ کر لیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ ایمان نہ لانے والے اور ان کے رویوں کو دیکھ کر انسان کرتا رہتا ہے, پریشان ہوتا رہتا ہے. تو کہا کہ اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, کہ اللہ جو ہے نا ان کا خود ہی حساب لے گا جب زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی. دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ شرک سے بچنا. تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسانیت کا کمال جو ہے وہ اللہ کا بندہ بننا ہے, عاجزی اور انکساری پیدا کرنا. چوتھی بات یہ سامنے آتی ہے کہ بہترین کتاب ہے قرآن مجید, جو میرے اور آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. قرآن پڑھنے والے ڈپریشن سے بچے رہتے ہیں, قرآن پڑھنے والے اللہ کو جب اپنا وارث بنا لیتے ہیں, معبود بنا لیتے ہیں, مالک, خالق, حاکم بنا لیتے ہیں, تو وہ اپنا آپ اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں. جب اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا, اللہ پر اعتماد کر لیا, آپ دیکھیں کہ اندیکھی راہوں سے ان کی اللہ جو ہے وہ مدد کرتا ہے. جیسے کہ پھر آگے صحابہ کہف کا واقعہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیات جو ہیں, جو اس کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا, اور اسی سورت کی آخری 10 آیتیں حفظ کرنے کا بھی ہمیں ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. اور یہ وہ سورت ہے کہ جو پڑھتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جاتا ہے, اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ایمان جو ہے ایمان کی تازگی کے لیے بڑی خوبصورت باتیں جو ہے وہ کہی گئی ہیں. تو اب عمل کا اصول ہمارے سامنے آیا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے, یہ ایک امتحان گاہ ہے, اور ہم کینڈیڈیٹ ہیں, ہم امتحان دے رہے ہیں. ہمارا ایگزامینر اللہ تعالیٰ ہے, وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, اور امتحان ہے ہماری باتوں کا اور کاموں کا, کہ ہم باتیں کیسی کرتے ہیں اور ہم کام کیسے کرتے ہیں, اور ہماری باتیں اور ہمارے کام کیا وہ حسن عمل ہیں ان کے اندر. ایہم احسن عملا, یا پیچھے آپ نے پڑھا تھا آیت نمبر جو ہے وہ 3 میں, الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. تو عمل جو ہے وہ عمل صالح ہیں کہ نہیں, یہ سوچنے کی بات ہے. اور میں آپ کے سامنے عمل صالح کے لیے ایک مثال رکھتی ہوں جو مجھے بڑی متاثر کرتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی مثال ہے, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی عمر میں برکت عطا کر. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جو ہے وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بھی سیکھا, اور وہ امام شافعی ان کے استادوں میں سے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے امام شافعی سے سیکھا ہے, وہ ان کے استاد تھے نا, تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نماز بھی ایسی نہیں پڑھی کہ جس کے بعد اپنے استاد کے لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا نہ کی ہو. اب امام अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की एक छोटी सी बेटी थी, वो बड़ी हैरान होती थी कि मेरे वालिद तो खुद इतने नेक हैं और मेरे वालिद की जिंदगी गैर मामूली इबादत और अल्लाह के रुजू में गुजरती है, अनाबत इल्लाह में गुजरती है, लेकिन मेरे वालिद जो है जो इल्मे हदीस की तदरीस में और उसको कायम करने में जो है वो हर वक्त मसरूफ रहते हैं और रात गिरियाजारी करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, इन दो कामों के अलावा मेरे बाप को कोई काम ही नहीं है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो अपने उस्ताद के लिए ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इमाम शाफी की उम्र में बरकत अता कर, रहमतुल्लाह अलैह। अब हुआ क्या कि फिर एक दफा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मिस्र में आए, काहिरा में, और तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ रहते थे, मिस्र में रहते थे, काहिरा में रहते थे। फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि वहां पे रहते रहते उसके बाद जो है वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए जो कि बगदाद में थे, और बगदाद से काहिरा का जो फासला था सैकड़ों मील का था। तो जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम भेजा कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा, उनको पैगाम भेजा कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ, तो बेटी के लिए बात बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि वो खुद तो दूर इतनी जा नहीं सकती थी, तो वो ये चाहती थी कि मैं जरा उन्हें देखूं तो सही कि उनके अंदर क्या ऐसी बात है कि मेरे वालिद हर नमाज के बाद उनके लिए दुआ करते हैं। तो वैसे भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ये चाहते थे कि जब वो आए तो वो उनसे जो है वो सीखें। अब ये कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आते हैं और आकर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान बनते हैं। अब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी को खसूसी हदायात दी। नंबर एक, वो मेहमान का खास ख्याल रखे ताकि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो, और दूसरी बात ये कि बेटी की तो अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपने वालिद के उस्ताद और जिनके लिए वालिद दुआ करते थे कि वो इतने नेक हैं होंगे तो मैं उनका जो है वो ख्याल रखूं, और वो ये जानना चाहती थी कि मेरे वालिद में और उनमें क्या फर्क है, यानी मेरे वालिद कितने नेक और आखिर उनमें क्या चीज है। शाम को इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दस्तरखान पर बैठे तो बच्ची ने इस बात का ध्यान रखा कि वो खाना कितना खाते हैं, इसलिए कि उसने देखा था कि इसके वालिद हमेशा थोड़ा खाते थे। इसने ये भी सुना था कि अल्लाह वाले बहुत थोड़ा खाते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब डट कर खाना खाया। नमाज इशा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने, आप भी घूर कर देख रहे हैं कि इतना क्यों खाया, नमाज इशा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद में अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साथ पढ़ी, वापिस आकर आराम की गरज से बिस्तर पर दराज हो गए। बिनते अहमद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी वक्फे वक्फे से अपने वालिद के कमरे का जायजा लेती रही कि इसके वालिद तो मसल्ले पर खड़े रब के हुजूर मनाजात और गिरिया जारी में मसरूफ है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर जो है वो आराम कर रहे हैं। उसे ख्याल हुआ कि शायद आज सफर की थकन के बाद सोए हैं, तहज्जुद में उठेंगे, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद में भी नहीं उठे। फजर की अजान हुई लेकिन वो बेदार ही नहीं हुए। जब इसके वालिद नमाज फजर के लिए मस्जिद जाने लगे तो उन्होंने आवाज दी, शेख जमात तैयार है, तशरीफ ले चलिए। अल्लाह अकबर, ये कहते हुए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने चादर उतार फेंकी और बगैर वुजू किए इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के साथ मस्जिद की तरफ चल दिए, और वुजू का पानी जो इनके लिए रखा गया था वो चूं का तू पड़ा रहा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी मालूम नहीं क्या मामला है, ये मेरे वालिद के कैसे उस्ताद हैं कि रात को खाना भी खूब खाया, सारी रात सोए रहे और सुबह बगैर वुजू के मस्जिद चले गए, क्योंकि वो लोटा पानी का जो रखा था वो वैसे ही भरा पड़ा था। और यानी ये जो इन्होंने अमाल किए हैं और ये जो इनकी रात भर का शुगल था ये तो किसी आम आदमी की सतह से ये बुलंद नजर नहीं आते। आखिर मेरे वालिद इनके किस अमल की वजह से इनके गिरविदा हैं कि हर वक्त इनके लिए दुआ करते रहते हैं। बेटी झुंझला रही थी, परेशान हो रही थी। अब नमाज फजर के बाद अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठे जिक्र और अस्कार में मसरूफ रहे और सूरज निकलने के बाद अशराक के नवाफिल अदा करके घर लौटे, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह नमाज फजर की अदायगी के बाद ही घर वापस आ गए और बिस्तर पर लेट गए, दराज हो गए। जब उन्हें नाश्ते पर बुलाया गया तो वो नाश्ते के लिए आकर बैठ गए। हजरत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी सोच रही थी, अगर ये वाकई बुजुर्ग हैं तो ये इनके अंदर ये बातें क्यों हैं, और अगर इनके अंदर ये बातें हैं तो ये बुजुर्ग किस तरह के हैं। अब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, शेख रात कैसी गुजरी, ठीक तरह से नींद आई? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक नवाला तोड़ते हुए अपने मेहमान से पूछा, रात तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आराम से गुजरी, लेकिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की सवालिया नजरें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर टिक गई, लेकिन मैं सोया एक लम्हे के लिए भी नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बात मुकम्मल करते हुए कहा, क्या वजह हुई? इब्ने हम्बल ने फिक्रमंद लहजे में सवाल पूछा, रात जब आपने इशा की नमाज पढ़ाई, जब इशा की नमाज किसने पढ़ाई थी? इमाम थे अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। कहा कि इमाम शाफी कहते हैं कि रात जब आपने इशा की नमाज पढ़ाई तो आपने सूरत बकरा की ये आयत तिलावत की, व इन का नजू उसरतिन फा नजरु इला मैसरा। وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ। जब आपने सूरत अल-बकरा की ये आयत पढ़ाई कि अगर मकरूज आदमी तंग हाल हो तो उसे इसके खुशहाली तक मोहलत दे दो, तो इस आयत मुबारका को सुनकर मेरे जहन में ये बात आई कि इस आयत से तो इस्लाम का कानून अफलास अखज होता है। फिर मैंने मजीद गौर किया तो मेरे जहन में यह ख्याल आया कि कानून अफलास की बुनियाद इखलाकी उसूल पर है। फिर मुझे ख्याल आया कि इससे तो यह हुक्म भी निकलता है, इसके बाद ख्याल आया कि इससे तो फला कानूनी शिक भी निकलती है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि मकरूज को कर्ज दिया हुआ है। अब ये उसने कर्ज क्यों लिया, वो था गरीब और अब वो दे नहीं पा रहा, मुद्दत तय जो थी वो सामने आ गई, तो अब क्या करो कि जब तक उसकी खुशहाली ना हो जाए तुम उसको जो है वो मोहलत दे दो। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उन्होंने क्या किया कि इस आयत पर गौर करना शुरू किया और इस आयत से अखज होने वाले सैकड़ों मसाइल बताने शुरू कर दिए, उस्ताद थे ना, वो बयान करते रह गए और अहमद बिन हम्बल सुनते चले गए। उस आयत से बयान करते करते इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं रात भर जब बिस्तर पर लेटा रहा तो उस आयत से मसाइल अखज करता रहा। फिका के एक इमाम है ना, कहते हैं जब मैं 108वें मसले पर पहुंचा, एक आयत से मैंने रात भर में 108 मसाइल जब अखज किए तो आपने मुझे नमाज फजर के लिए आवाज दे दी। बेटी जो थी अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की जामिद और साकित, ये सब कुछ सुने जा रही थी। अब उसे मालूम हुआ कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की एक रात इसके वालिद की हजारों रातों पर भारी है, इसलिए कि वालिद की इबादत का ताल्लुक तो उनकी अपनी जात से है ना, जो नवाफिल पढ़ लिए, जो तहज्जुद पढ़ ली, जो जाय नमाज पर खड़े होकर गिरिया जारी कर ली, वो बंदे का और अल्लाह का मामला है ना। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जो रात भर जाकर एक आयत से 108 मसाइल जो थे वो अखज किए, तो उसका ताल्लुक पूरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई के लिए है। तो उसको ये बात तो समझ आ गई कि मेरे वालिद के जो उस्ताद हैं उनकी एक रात जो है वो मेरे वालिद की हजारों रातों पर भारी है। लेकिन अब दूसरा सवाल उसके जहन में सर उठाए खड़ा था कि इतना ज्यादा खाते क्यों है। अभी वो सोच ही रही थी कि इसके वालिद ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आपका सफर कैसा रहा? सफर में थोड़ी सी परेशानी रही, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उंगलियां चाटते हुए कहना शुरू किया, क्यों मियां चाट है नाश्ता कर रहे हैं? इसलिए कि जब मैं काहिरा से रवाना हुआ तो मेरे पास दिरहम और दिनार की जो थैली थी वो रास्ते में गुम हो गई। अब मेरे सामने दो ही सूरतें थी, एक तो ये कि काहिरा वापस चला जाऊं और वहां से ज़ादेरा का इंतजाम करके वापस आऊं। इस सूरत में काफिला छूट जाता और मैं जिस मुहद्दस की खिदमत में पहुंचना चाहता था वो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है जब बगदाद आए तो उनका एक मकसद ये था कि वहां पे एक बुजुर्ग थे जिनसे वो हदीस को बराह रास्त सुनना चाहते थे, बराह रास्त हदीस की समात करना, और उम्र उनकी बहुत हो चुकी थी और उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और वो बुजुर्ग जो है वो फौत हो जाए। उस जमाने का सफर ऐसा तो नहीं होता था कि एक फ्लाइट मिस होगी तो दूसरी ले ली जाए। तो कहने लगे कि मैंने सोचा ना मालूम कब ये बुजुर्ग का जो चिराग है ये गुल हो जाए। अब दूसरी सूरत यह थी कि अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाऊं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने दूसरी सूरत पर अमल को तरजीह दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर बोलने लगे कि मेरे काफिले के साथियों ने मेरी बहुत इज्जत और खिदमत की लेकिन मुझे उनकी आमदनी के जायज होने पर शरह सदर हासिल न था। इस सूरत में शरीयत का हुक्म यह है कि जब इंसान की जान पर बन जाए तो मशकूक आमदनी में से सिर्फ बकदरे जरूरत खाया जा सकता है, इसलिए मैंने तीसरे चौथे दिन इनसे बकदरे जरूरत खाना कबूल किया और पूरे सफर में एक मर्तबा भी पेट भरकर खाना ना खाया। आज पहली मर्तबा आपके दस्तरखान पर मुझे हलाल और जायज आमदनी का खाना मिला है। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि रिश्ते हलाल में एक खास नूर होता है जिसका अंदाजा दस्तरखान पर बैठे ही हो जाता है। आज तुम्हारे दस्तरखान पर अहमद बिन हम्बल मुझे जितना नूर नजर आया इतना किसी दस्तरखान पर कभी नजर नहीं आया, इसलिए मैंने आज नूर से पूरा पूरा इस्तफादा किया। ये सुनकर बच्ची के दिल में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कदर व मंजिलत और ज्यादा बढ़ गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद में चंद दिन के लिए कयाम किया। इस दौरान इनसे मिलने वाले जो थे उनका तांता बंधा रहा सुबह से शाम तक, और आखिर एक दिन जो है वो दोबारा मिस्र की तरफ रवाना हो गए। तो असल बात क्या है, इन्ना जअलना मअलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अल्लाह ने जो कुछ है जमीन पर उसको दुनिया की आरजी रौनक बनाया है, दुनिया की जीनत बनाया है, सब कुछ फना हो जाने वाला है। और सब कुछ किसी इंसान को अल्लाह ने जो कुछ भी दिया ये देखने के लिए अय्युहुम अहसनु अमला कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। पाकिस्तान की बात है, एक लड़का जब डॉक्टर बना तो उसके घर वाले जब रिश्ते के लिए कहते तो उसकी बहन और घर वाले कहते कि उसको ना खूबसूरत लड़की चाहिए, बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए। तो मैं कहती अच्छा बात खत्म आई गई होगी, कई सालों के बाद मुझे इनका कोई रिश्तेदार मिला, मैंने पूछा कि अच्छा फिर उसकी शादी हो गई होगी, कैसी उसकी बीवी है? बीवी भी डॉक्टर है, सब कुछ है, लेकिन कहने लगी। फिर वो जरा खामोश हो गई, फिर मैंने कहा कि खूबसूरत है ना, क्योंकि मुझे पता था कि उसकी लड़के की डिमांड ये है। अल्लाह कैसे बंदे को आजमाता है ना, कल से और मुस्तकिल मैं इस बात पे सोच रही हूँ। कहने लगी कि हाँ अच्छी थी, खूबसूरत थी, शादी से पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, उससे चेहरे पर कुछ निशान आए। दूसरा जो है अब उसके उसको कोई स्किन डिजीज हो गई है जिसका भी पता नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ये हिस्सा और ये हिस्सा जो ऊपर का है ये सब ये वाला जो आंखों के ऊपर का सख्त स्याह है और चेहरे का भी जो है वो स्याह होता जा रहा है, चेहरा धब्बे धब्बे पड़ते जा रहे हैं। और क्योंकि वो तो उस बात को उतना नहीं जानती थी जिससे मैं पूछ रही थी, लेकिन बस ऐसे बिल्कुल ही जो है वो दिल जो है वो दहल के रह गया मेरा ना, कि अल्लाह कैसे बंदों को आजमाता है कभी ना। और इसी तरह एक दफा किसी ने बताया था, माँ ही जिक्र कर रही थी कि बेटा जो है कुछ उसकी सोबत अच्छी नहीं है ना, और मिलता है लड़कियों से और इस तरह, तो माँ बड़ी दुखी थी और बहुत उसकी तरबियत पर तवज्जो देना चाहती थी। और फिर कुछ अरसे बाद मेरी वक्तन फक्तन बहुत जमाने बहुत साल गुजर गए, अब
वक्तन फक्तन जब उसकी माँ से मुलाकात हुई तो कहने लगी, एक दफा बताया कि उसका ना एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अल्लाह ने उसको बच्चे को जिंदगी दी है। फिर कहने लगी, अब फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है, और लेकिन उसका खास तौर पे वो जो नीचे का हिस्सा है ना, उस पर बहुत शदीद जख्म और चोटें हैं, और स्पेशल उस पार्ट पर वो उठ नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, और बहुत ही वो तकलीफ में है। मैंने कुछ नहीं उसकी माँ को कहा ना, वैसे कोई जुमला नहीं बोला, मैंने कहा कि बस अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है ताकि वो अपनी जो दुनिया की जिंदगी में उससे जो गलतियां हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, अल्लाह जानता है क्या कितने हुए, लेकिन अल्लाह ने जो इसको ये जिंदगी दी है ना, ये उसकी जो है वो गुनाहों की तलाफी के लिए है कि जो भी उससे गलतियां हुई है ना, वो तौबा इस्तगफार करे। तो बाज औकात खास तौर पे आप देखें, वहीं पे चोट का लगना, तो ये क्या है, यानी बाज अमलों की सजा इंसान को दुनिया ही नहीं अल्लाह दे देता है। वह इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, और हमें डरना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन अमल करने वालों में बनाए। और एक बात ये पता चलती है, कभी किसी के जाहिरी अमल देखकर उसको कुछ ना कहें। आप नहीं जानती, आप नहीं जानती कि दूसरा करने वाला जो है वो कैसा है। जैसे कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बेटी जो है उसका अंदाजा देखें, और जो उनके वालिद के उस्ताद थे उनका फिर आप अमल देखें। एक बात ये भी समझ आती है कि अक्सर हम ये चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा नफल पढ़ूं, मैं नफली रोजे रखूं, या मैं बस सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो दूं, लेकिन जरूर इस पर आप सोचें कि अगर हम सब सिर्फ अपने आप को ही संवारेंगे तो बाकी जो सोसाइटी में बुराइयां फैली हुई हैं तो ये पैगंबराना मिशन कौन अदा करेगा। तो इसके लिए हमें अपने वक्त की, अपनी कुव्वत की, अपनी जवानी की, अपनी सलाहियतों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। जैसे आपकी एक क्लास फेलो जो है वो वेबसाइट पर लेक्चर डालती है, अब वक्त तो उसमें बहुत लगता है, ये आसान काम तो नहीं है, लेकिन अब वो कितने लोगों के लिए उसका ये अमल सदका जारिया बनता है। अगर आप में से कोई शख्स आकर कुर्सियां बिछाता है, यहाँ आके बैठता है, सोबत सवाले मिलती है, तो कितने लोगों के लिए ये ऑफिस का आबाद करना, दारुल ईमान के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करना, ये कितने लोगों के लिए सदका जारिया बन जाता है। इसी तरह कोई किताब हम लिख देते हैं, कोई सेंटर खोल लेते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे लिए बाकिया तो सालेहात में शामिल हो जाए, तो आसान हुआ माला, अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राजी हो जाए, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और एक बात ये भी सामने आती है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, आप देखें कि हलाल का कितना ख्याल रखने वाले थे ना, और इल्म का कितना शौक था। एक ही वाक्य से आप देखें अमल के कितने उसूल हमारे सामने आते हैं ना, और अल्लाह बंदे को कितना आजमाता है। मैंने इस दफा ना फ्लू शॉट ले लिया, मैंने सोचा कि मेरी जब तबीयत खराब होती है, मेरा गला खराब होता है, तो लेक्चर मुतासिर होते हैं, पढ़ाई मुतासिर होती है, और मैंने शुरू में ही सर्दियां शुरू हुई, मैंने डॉक्टर जो है उसने मुझे कहा, और मैंने मशवरा नहीं किया, वहीं पर ले लिया। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम मशवरा कर लेती, लेना चाहिए था कि नहीं, लेकिन जब से फ्लू शॉट लिया मुस्तकिल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या है कि इंसान तदबीर करता है और फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान की जो है ना आजमाइश होती है कि ये मेरे काम के लिए कितना मुखलिस है ना। तो मेरा और आपका काम जो है वो कोशिशें करना है और एक बेहतरीन मुसलमान बनना है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो अमल करने हैं, और एक ही फिक्र करनी चाहिए कि हमारा रब जो है वो हमसे राजी हो जाए। अच्छा, एक और बात इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, अब आप देखें कि लोग एक फिका वाले दूसरी फिका वाले को बुरा भला कहते रहते हैं, अब देखें इन लोगों के आपस में कितनी मोहब्बत थी ना, हालांकि यानी फिका का इख्तलाफ होने के बावजूद, अब आप देखें कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है इमाम अहमद बिन हम्बल के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को बढ़ाते थे, कैसे इज्जत करते थे। ये तो सारे फरोई इख्तलाफात है, दीन तो एक है ना। तो इससे ये बात भी पता चलती है कि आइए आपस में मोहब्बतों को बखेरें। अल्लाह ताला हम सबको हुस्ने अमल करने वाला बनाए, हमसे राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।